प्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा
शांति। हम सभी आत्माएं परमात्मा बाप के आज्ञाकारी बच्चे हैं। परमात्म बाप की आज्ञा है कि मेरे बच्चे सदा खुशनुमा मुस्कुराता हुआ दैवी गुणधारी बनकर बच्चे रहे, क्योंकि अपना यादगार भविष्य जो प्रैक्टिकल बनना है वो चित्र भी आप देखते हैं, सदा मुस्कुराता हुआ दिखाते। मुस्कुराने में और हंसने में अंतर है। जो हंसता है आवाज से वो रोता भी जल्दी है, तो और जो मुस्कुराता है वो सदा ही मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्योंकि मुस्कुराना होता है आंतरिक प्राप्ति से, प्रभु की प्राप्ति से, और हंसना होता है बाहर की बातों से। तो जो बाहर की बातें हैं वो तो हंसाती रुलाती दोनों हैं, लेकिन जो प्रभु से प्राप्ति होती है, जिस प्राप्ति से आत्मा संपन्न हो जाती है, वो मुस्कुराती रहती है। तो बाबा पिछली दो मुरली में हम सब बच्चों का विशेष ध्यान खिंचवा रहा है। शिवरात्रि पर बाबा ने कहा था कि बर्थडे की गिफ्ट आप क्रोध दे दो, ये बाप को गिफ्ट दे दो। अभी होली पर बाबा ने कहा इस क्रोध को योग अग्नि में जला दो। बाबा ने यहां तक कहा कि आप इतना क्रोध मुक्त बन जाओ कि जैसे चारों तरफ ब्रह्मा कुमारियां फेमस हैं कि ये पवित्र बनाती हैं, ऐसे चारों तरफ आवाज फैल जाए कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती। तो यह तो जब प्रैक्टिकल हमारे जीवन में होगा, जैसे पवित्रता हमारे जीवन में है, उसका चारों तरफ वायुमंडल है, ऐसे जब हम आत्माएं क्रोध मुक्त बन जाएंगी तो इसका भी आवाज चारों तरफ फैल जाएगा। क्योंकि क्रोध आने से बाबा ने बताया टेंशन बहुत आता है, और टेंशन से अनेक बीमारियां, और चेहरा कैसा हो जाता है वो हर एक अनुभवी है। लेकिन बाबा चाहता है खिला हुआ फूल जैसे वैसे बनकर रहें। तो आप देवताई जीवन में जब थे तब भी आप आत्मा को यह शरीर था, जैसे अब शरीर है, जैसे अब परिवार है तैसे तब भी परिवार था, लेकिन तब देवताई जीवन में हम बुराइयों से मुक्त थे। कारण क्यों मुक्त थे शरीर होते हुए भी, उसका कारण था देह भान जरूर था लेकिन संगम युग पर जो हम ब्राह्मण आत्माओं ने जो आत्मक स्थिति का अभ्यास किया, परमात्म शक्तियां जो आत्मा में भरी, आत्मा का अनादि आदि गुण जो आत्मा ने अनुभव किया, वो सब स्वरूप सतयुग में आत्मा में समाया हुआ था। इस कारण से देह भान आत्मा पर हावी नहीं हो पाया, पावरफुल नहीं हो पाया। देह भान था जरूर, ऐसे नहीं कि सतयुग में देह भान नहीं है, आत्म अभिमानी है, नहीं। आत्म अभिमानी की शक्ति है लेकिन देह भान है। जैसे देखो कि सतयुग में यह तो सबको पता रहेगा कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बेटा है, यह नौकर है, ये भान तो रहेगा ना, तो ये देह भान नहीं हुआ। तो देह भान होगा लेकिन इस समय जो आत्मा में आपने इतनी शक्ति भरी है और आत्मा इस शरीर का मालिक है, यह जो प्रैक्टिकल आपने अभ्यास किया है वो अभ्यास आपका स्वरूप बन गया है, इसलिए देह का भान होते हुए भी आत्मा अपने स्वरूप में शक्तियों में स्थित थी। इसलिए देह भान देह अभिमान में परिवर्तित नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे आत्मा शरीर के साथ रहते रहते देह भान का रिंचक प्रभाव पड़ना शुरू हुआ और पढ़ते पढ़ते त्रेता के अंत तक देह भान पूरा रूप ले लिया। और जैसे द्वापर आया तो देह भान देह अभिमान में परिवर्तित हो गया, और जैसे देह अभिमान आया तो पांचों विकार वार किया, अर्थात पांचों विकारों के अधीन होने लगे। तो इस समय हम आत्माएं संगम युग पर हैं, अशरीरी होने का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन देह भान ज्यादा समय रहता है। मैं भाई हूं, बहन हूं, कन्या हूं या जो भी हूं, यह भान ज्यादा समय रहता है। तो अशरीरी होने का अभ्यास कर रहे हैं इसलिए देह भान बहुत जल्दी देह अभिमान में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि देह भान तो रहता ही है, लेकिन देह अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है। तो जैसे ही देह अभिमान आता है तो दो प्रकार का मैं देह अभिमान आते ही आ जाता है। दो प्रकार का मैं, एक देह अभिमान का मैं, अपने को बहुत कुछ समझना, अपने से ऊंचा किसी को मानना नहीं, ऊंचा तो छोड़ो, अपने बराबर भी किसी को नहीं समझना, देह अभिमान। और दूसरा मैं आता है दिल शिकस्त। दिल शिकस्त का मैं नीचे गिराता है, आत्मा को बहुत गिरती कला में ले जाता है। और देह अभिमान का मैं आता है तो देह अभिमान के मैं वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होता है, अपमान, इंसल्ट। तो जहां अपमान फील होता है वहां फिर देह अभिमान अपना कर्म करना शुरू कर देता है। क्या? क्रोध का। क्रोध का भूत आते ही एक बड़ी सुंदर एक कहानी है। एक बार गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि जब कोई गुस्सा करता है तो पास में ही लोग हैं, जोर से क्यों बोलता है? वो तो धीरे से भी बोलो तो सुन लेगा ना, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत जोर से बोलता है। तो चेले ने तो इसका जवाब नहीं दे पाए कि क्या कारण है, क्यों जोर से बोलता है। तो गुरु जी ने कहा कि जोर से इसलिए बोलता है क्योंकि जब गुस्सा आता है तो दिल की दूरी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए चिल्लाना पड़ता है उस दूरी तक आवाज पहुंचाने के लिए। और जहां प्यार होता है वहां दिल की दूरी समाप्त हो जाती है, धीरे से बोलते। और जितना प्यार नजदीक आता जाता है उतनी आवाज कम होती जाती है। गहरा प्यार हो जाता है तो नैनों से ही समझने लगते, और गहरा हो जाता है तो फिर तार जुड़ जाती है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जिस ब्राह्मण बच्चे का भगवान से दिल का प्यार जुट गया, एक बाबा दूसरा ना कोई, जिसका ये आंतरिक संकल्प बन गया, उसको अशरीरी होने में, बाणी से परे की स्थिति में रहने में मुश्किल नहीं लगता है। और जिसका नहीं जुड़ पाया है बाबा से प्यार, उसको बाणी से परे जाने में मेहनत लग रही है, वो बाणी से परे हो नहीं पाता है जल्दी, अशरीरी बन नहीं पाता है। तो देह भान आते ही जो देह भान का मैं आता है, इसके आते ही जैसे रावण के 5 महाभूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे देह भान का मैंपन आते ही देह भान के 5 महाभूत आते हैं। वो है लगाव, टकराव, अभाव, दबाव और प्रभाव। यह पांच भूत देह भान के आते आते, जैसे देह भान में आए तो रावण आया, लेकिन जैसे देह भान का मैं आया तो यह पांच महाभूत देह अभिमान के आ जाते हैं। लगाव, टकराव, अभाव, दबाव और प्रभाव। ऐसे ही जब दिल शिकस्त का मैं आता है तो दिल शिकस्त आते ही इसके भी पांच महाभूत आते हैं। दिल शिकस्त आते ही इनके भी पांच आते हैं। पहली बात, दिल शिकस्त आते ही हिम्मतहीन हो जाते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, और जहां उमंग उत्साह खत्म तो ब्राह्मण जीवन होते हुए भी जीवन जीवन नहीं रह जाती। तो पहली बात, हिम्मतहीन हो जाते। दूसरी बात, उदासी आ जाती है। तीसरी बात, ड्रामा को उल्टे रूप में प्रयोग करते हैं। चौथी बात, हर बात में दूसरे की गलती देते हैं। और पांचवी बात, भगवान पर समर्पण होने की भावना, भगवान के रिगार्ड की भावना खत्म हो जाती है। तो यह पांच भूत दिल शिकस्त के आते। फिर है तीसरा मैं, आत्मा का मैं। मैं आत्मा हूं, इस दो मैं को खत्म करना है, और मैं आत्मा हूं इस मैं को इमर्ज करना है। तो जैसे यह आता है कि मैं आत्मा हूं, तो फिर पांच विशेष प्राप्तियां होती हैं। ऐसे मैं आत्मा हूं इस स्मृति से सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व प्राप्तियों का आधार यही है, फिर भी सर्व प्राप्तियों में मुख्य पांच प्राप्तियां मैं आत्मा हूं इस स्मृति सो स्थिति से आ जाती है। पहली बात, मैं आत्मा हूं इस स्मृति से निरंतर योगी बन जाएंगे। जैसे शरीर समझने से, शरीर की स्मृति से शरीर के संबंधी याद रहते, स्वतः याद रहते, वैसे आत्मा समझने से आत्माओं का सर्व संबंधी परमात्मा स्वतः याद रहता है।
प्रेम से बस दो भर
आत्मक स्थिति के आधार से पहली बात निरंतर योगी बन जाते, दूसरी बात आत्मा को अपने अनादि और आदि गुण की अनुभूति होती है, तीसरी बात पुराने संस्कार सहज परिवर्तन हो जाते हैं, चौथी बात माया जीत बन जाते हैं, और पांचवी बात सदा अंतर्मुखी रहते हैं। अंतर्मुखी के लिए तो बाबा ने कहा था अंतर्मुखी सदा अति इंद्रिय सुखी। जो अंतर्मुखी होता है वो सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलता रहता है। तो देह भान का मैं आते जो पांच महाभूत आए, पहला है लगाव। लगाव से मुक्त होने की विधि क्या है? लगाव दो से होता है, एक व्यक्ति दूसरा वस्तु। व्यक्ति और वस्तु, तो व्यक्ति में लगाव का मुख्य है लौकिक परिवार, क्योंकि हम 24 घंटा उन्हीं के साथ रहते हैं। हमारा सारा लेन देन कार व्यवहार सब लौकिक के साथ है, तो उनके साथ रहते हुए हम न्यारे रहें, जैसे कमल का फूल रहते हुए न्यारा रहता है, लेकिन हमें न्यारे रहते हुए इससे भी ऊंची स्टेज उपराम तक चलना है, क्योंकि उपराम वाली आत्मा ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन सकती है। सिर्फ न्यारे रहने वाली आत्मा पुरुषार्थ में ही रह जाएगी। न्यारे का सिंबल है कमल का फूल, और उपराम का सिंबल है, उपराम का सिंबल है गुलाब का फूल। कमल का फूल परिवार के साथ है, सबके साथ है, लेकिन जब सबका साथ छोड़कर पानी से भी ऊपर आ जाता है, न्यारा बन जाता है, तब सबको प्यारा लगता है, तभी वो अर्पित होता है। जब तक पानी के अंदर है, परिवार के साथ है, तब तक ना प्यारा है ना अर्पित होता है। हम आप भी अगर सर्व के प्यारे बनना चाहते हैं तो पहले न्यारे बन। जब न्यारे बनो तब प्यारे भी लगो और प्रभु पर अर्पित भी हो सको, तब प्रभु पर समर्पण होने की भावना स्वतः जागृत हो जाएगी। अपना हर संकल्प बोल कर्म तन मन धन सब बाबा 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 तब आने लगेगा। लेकिन पहले न्यारे बने तब, फिर न्यारे के बाद उपराम स्टेज है। उपराम है गुलाब का फूल, आप कमल का फूल और गुलाब का फूल दोनों अपने आंखों के सामने लाओ, दोनों फूल में अंतर देखो कि जब गुलाब का फूल कंप्लीट खिल जाता है तो उसकी पंखड़ियां अपने आप झड़ जाती है, सिर्फ बीच में वही फूल बचता है, उसको गिराना नहीं पड़ता है, स्वतः ही गिर जाती है। लेकिन और किसी के फूल की पंखड़ी गिरती नहीं है, सूख जाती है, चिपक जाती है, लेकिन गिरती नहीं। तो उपराम अर्थात सबसे स्वतः ही न्यारा आत्मक स्वरूप में स्थित। दूसरी विशेषता गुलाब के फूल की कि गुलाब के फूल पर कभी भंवरा नहीं बैठता है। तो गुलाब के फूल की स्थिति वाला ना किसी के अटैचमेंट में आएगा, ना किसी को अटैचमेंट में लाएगा न्यारा। तो हमें उपराम स्थिति को प्राप्त करना है, लेकिन उसके पहले न्यारा बनना है। न्यारा और उपराम ऐसा समझ लो जैसे हलवा बनाते हो तो कड़ाही में चिपकता है तो उसको छुड़ाते हो, न्यारा बनाते हो कड़ाही से, और जब कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप किनारा छोड़ देता है। तो न्यारा बनना अर्थात छोड़ने का पुरुषार्थ करना, और उपराम अर्थात छूट गया, एकदम एक मैं आत्मा और मेरा बाबा, ऐसी स्थिति, इसको कहते हैं उपराम। तो लगाव मुक्त बनने में सबसे पहले लौकिक परिवार से न्यारा बन, इनसे न्यारा बनने की विधि है, एक शब्द याद रखो तो न्यारे बन जाओगे, वो शब्द है कल्याण। सदा मन में यह संकल्प रहे कि मुझे लौकिक परिवार के साथ रहते हुए या जहां सर्विस करते कुछ भी रहते हुए मुझ आत्मा को अपना भी कल्याण करना है, और बाबा ने हमको इनके कल्याण के लिए इनके पास भेजा हुआ है, इनके कल्याण के लिए भेजा हुआ है। जैसे आप प्रदर्शनी समझाते हो तो कोशिश करते हो ना कि समझ जाए समझ जाए, इधर उधर जाता है तो भी कोशिश करते हो, बड़ी बहन से मिलाते हो ये समझ जाए, क्यों? उस समय आपकी भावना कल्याण की है, ये बाबा का बन जाए बाबा का बन जाए। ऐसे अगर स्मृति रहे कि मुझे लौकिक परिवार का कल्याण करना है तो कल्याण की स्मृति लगाव मुक्त बना देगी। कैसे? लौकिक परिवार का कल्याण कैसे होगा? कल्याण होगा ही बुराई छोड़ने से, और बुराई छूटेगी कैसे? जब शिव बाबा के साथ कनेक्शन जुटेगा तब। तो किसी का कल्याण तब हो सकता है जब उसका बुद्धि योग भगवान के साथ जुटा दो तब, और अपना भी कल्याण तब हो सकता है जब आपका बुद्धि योग बाबा से जुटा रहे तब। तो जब दोनों का बुद्धि योग बाबा के साथ जुट गया तो लगाव मुक्त हो गए या नहीं? स्वतः ही हो जाएंगे। जब यह शब्द कल्याण शब्द भूलते हो तब मोह के जाल में फंसते हो या लगाव आता है। दूसरी बात है वस्तु से लगाओ। वस्तु जरूर यूज करना है, क्योंकि एक सेकंड भी बिना वस्तु यूज किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि यह शरीर पांच तत्वों का है। तो पांच तत्वों के शरीर को पांच तत्वों की चीज हर समय चाहिए, क्योंकि पांच तत्वों की दुनिया में है, इसके बिना तो ये चल ही नहीं सकता है। लेकिन हमें हर वस्तु यूज करते हुए न्यारे कैसे रहें? मान लो आप भोजन खा रहे हो, भोजन खाते हुए कैसे न्यारे रहो? या नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, कैसे न्यारे रहो? कुछ भी है, वस्तु से न्यारे रहने की बहुत सुंदर विधि है। आज से अपना कर देखो, न्यारे हो जाते हो या नहीं। विधि है, रामायण में दिखाते हैं कि जब राम रावण को मार के वापस अयोध्या आया, राज सिंहासन पर बैठा तो सभी को गिफ्ट दिया, सौगात दिया, लेकिन हनुमान जी को नहीं दिया कुछ भी। तो हनुमान जी को सीता जी ने अपने गले का नौलखा हार, जो अमूल्य हार था, वो हनुमान जी को दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा उपकार सीता के ऊपर किया था। तो हनुमान जी ने उस हार को, एक एक जो मोती उसमें जड़े थे, दांत से तोड़ता था और तोड़ के ऐसे देखता था, फिर फेंक देता था। हर मोती तोड़े, ऐसे देखकर फेंक दे। तो सबने कहा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? किसी ने कहा, बंदर को क्या पता हीरा मोती क्या होता है। तो हनुमान जी ने कहा, मुझे तो ये पता नहीं हीरा मोती क्या है, मैं तो ये देख रहा हूं इसमें राम जी का फोटो कहां है। तो मुझे किसी ने राम जी का फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको फेंक रहा हूं। तो हम आप सब बच्चे जो भी चीज यूज करें, सिर्फ इतना देखें कि इसको यूज करने से मुझे मीठे बाबा की याद आई, इस चीज को यूज करने से सेवा हुई, जिस चीज के यूज करने से बाबा की याद ना आए, सेवा ना हो, वो मेरे काम की नहीं। ये अच्छी तरह से पक्का कर लो। कोई भी चीज है, यूज करो, अगर यूज करने से बाबा याद नहीं आए और उस चीज से सेवा ना हो, तो वो चीज मेरे काम की नहीं है। और जिस चीज में बाबा की याद आए, खूब यूज करो। जैसे उदाहरण के रूप से देखो कई बाबा के बच्चे हैं, वे सोने का बैश पहनते हैं, सोने की अंगूठी पहनते हैं। अच्छी बात है, क्यों पहनते हैं? बाबा याद आएगा, देखते ही बाबा याद आएगा, ये बहुत अच्छी बात। कोई भी देखेगा तुरंत सेवा करोगे। तो जिस चीज से अपनी उन्नति हो रही है और सेवा हो रही है वो चीज यूज करो। मान लो भोजन कर रहे हो, बहुत अच्छा खाना बना है, आपके पसंद का खाना बना है, लेकिन आप टेस्ट लेकर खा रहे हो, बाबा की याद नहीं है, ऐसे खा रहे हो, तो वो भोजन बेकार है। आप सूखी रोटी खा रहे थे, अगर बाबा की याद में खा रहे थे और जो आपको खाते हुए देखता उसका भी योग लग जाता, कैसे बाबा की याद में खा रहा है, वो सूखी रोटी बहुत मूल्यवान है। इसलिए कोई भी चीज, कैसा भी कपड़ा पहनो, कुछ भी करो, कैसे भी हो, लेकिन बाबा की याद आए और सेवा हो, वो चीज आपके काम की है, नहीं तो मेरे काम की नहीं है। न्यारा बनने की बहुत सुंदर विधि है ये, हो सकता है ना माताएं, हो सकता है, हो सकता है। भाई लोग मुबारक हो, बस यही ख्याल रखना कि बाबा याद आए और इस चीज से सेवा हो, ये दो चीज जरूर होनी चाहिए। इसके बाद है टकराव। टकराव आने का कारण है वही देह भान। देह भान में तो रहते ही हैं, लेकिन जैसे किसी ने मेरा कहना नहीं माना, मेरी इच्छा के विपरीत किया, बस रूप बदल जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा गहराई से सोचो कि अगर हम आज चाहते हैं कि आप हमारी इच्छा के अनुरूप करो, तो आपकी भी तो कुछ इच्छा होगी या नहीं होगी? तो अगर हम आपकी इच्छा के अनुरूप करें तो आप हमारी इच्छा के अनुरूप अवश्य करोगे। तो टकराव का सुंदर टालने की विधि है कि जो मैं चाहता हूं पहले मैं उसको दूं, टकराव होगा ही नहीं। हम सम्मान चाहते हैं तो पहले सम्मान दूं, सम्मान देंगे मिलेगा अवश्य। यह अंदर पक्का कर लो, देना ही लेना है, टकराव से बच जाएंगे। दूसरी बात, टकराव की स्थिति वहां भी आती है, आपकी गलती नहीं है, सम्मान दे रहे हो फिर भी मिल रहा है उल्टा, फिर भी आपसे लड़ ही रहा है, आपकी ग्लानी कर रहा है। इसमें भी एक तो आपका हिसाब किताब है, दूसरी बात है थोड़ा सा बेहद में सोचो तो टकराव से मुक्त हो जाओगे। जैसे देखो, जब हम आप सब भक्ति करते थे और भक्ति करते हुए हम जिस इष्ट की भक्ति कर रहे थे, हमारे इच्छा के अनुरूप हमें प्राप्ति नहीं हुई और उल्टा नुकसान हो जाता था, तो हम क्या करते थे? अगर उल्टा नुकसान हो जाता था तो और क्या करते थे? और प्यार से भक्ति करते थे और उसको मनाने की कोशिश करते थे, यही करते थे ना? और वो देवताएं कौन हैं? वो देवी या देवताएं कौन हैं? यही है ना। तो जब पत्थर की मूर्ति थी तब मनाने की कोशिश करते थे, और चैतन्य में बैठे हैं तो उल्टा हो रहा है। तो यह अगर संकल्प आ जाए कि चैतन्य में यही देवी देवताएं हैं जिनको हम भक्ति में इतना मनाया, अभी अगर मना लेते हैं अर्थात गलती हो गई माफ कर दो, गलती है नहीं लेकिन गलती हो गई माफ कर दो, ये कहना ही और मनाना है, मान जाएगा, टकराव खत्म हो जाएगा। हो सकता है ना ये या नहीं हो सकता है? इसको करना ही है, क्योंकि बाबा बहुत जोर दिया है टकराव अर्थात क्रोध पर विजय प्राप्त करने, क्योंकि टकराव में पहला शब्द वाणी ही तेज होती है, वैल्यूम बढ़ता है, फिर उसके बाद तो ईर्ष्या कई बातें आती है, और तीसरा है अभाव, अभाव अर्थात कमी। अगर ब्राह्मण जीवन में किसी भी प्रकार की कमी है, चाहे शक्तियों की चाहे स्थूल प्राप्तियों की, तो इसके कमी का कारण है कि अभी तक आप पूर्ण रूप से ब्राह्मण नहीं बने हो, हाफ कास्ट ब्राह्मण हो, फुल कास्ट नहीं। अगर फुल कास्ट ब्राह्मण बन जाओ तो भगवान के शब्द हैं, अपरापत कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने। अगर अपरापत है तो ब्राह्मण नहीं बने। ब्राह्मण बनने का अर्थ ही है जीते जी मरना, मर करके नया जन्म लेना। लौकिक में भी देखो, कोई मरता है तो तीन बातें होती हैं, शरीर बदलता है, संबंधी बदलते हैं, स्थान बदलता है। आप देखो हम जीते जी मर के तीनों हमारा बदला है। पहली बात शरीर, शरीर बदलने का अर्थ, शरीर तो वही है, बदलने का अर्थ पुराना शरीर आपका भान था मैं डॉक्टर हूं, बाप हूं, ये हूं, भाई हूं, ये हूं, या सास हूं, बहू, जो भी, आपका शरीर बदला अर्थात आपको प्रति सेकंड याद रहे कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं या ब्रह्मा कुमारी हूं। यह स्मृति है शरीर को बदलना। कोई मरता है तो शरीर बदलता है। अगर यह स्मृति है मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, तो आप जीते जी मर के नया जन्म लिया है। अगर यह स्मृति नहीं रहती है, यह भान रहता है मैं भाई हूं, बाप हूं, मां हूं, जो भी है, तो इसका मतलब अभी आप मरे नहीं, पुरानी दुनिया में ब्राह्मण नहीं है। तो जब ब्राह्मण है ही नहीं तो भगवान की तो गारंटी ब्राह्मणों के लिए है, शूद्रों के लिए नहीं। गारंटी तो ब्राह्मणों की भगवान की इतनी है कि सारी दुनिया भूखा मरेगी लेकिन हम अपने बच्चों को दाल रोटी अंत तक खिलाते रहेंगे। हम तो कहते हैं अंत तक दाल रोटी क्या, लोग तो भूखे मरेंगे और ब्राह्मण खा खा के मरेंगे। देखो प्रैक्टिकल यहां कितना खा रहे हो, सुबह से लेकर के शुरू हो जाता है, बाबा कितना खिला रहा है, लेकिन किसको? ब्राह्मण को। तो पहली बात देखो, हम ब्राह्मण बने हैं, शरीर चेंज हुआ। फिर दूसरी बात, स्थान चेंज हुआ। ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस है माउंट आबू राजस्थान। आप जहां से आए हैं बिहार बंगाल उड़ीसा, जहां वो नहीं है, वो आपका कर्म क्षेत्र है, ऑफिस है, लेकिन परमानेंट एड्रेस माउंट आबू है। तीसरी बात है, संबंधी बदल गए। ब्राह्मणों का सर्व संबंधी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है। आपका सर्व संबंधी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है, माता पिता भाई बहन बंधु सखा नाती पोत्रा धोत्रा सब कुछ शिव बाबा है। अगर आप इसके अलावा, अगर आपको लौकिक जीवन की बात याद आती है, तो यह तो ऐसे हुआ जैसे कोई मर जाए और लोग समझे मर गया है, फिर जिंदा हो जाए तो क्या कहते हैं? भूत। तो अगर हमें पुरानी स्मृति है तो हम सब क्या हुए? अब भूत की तो गारंटी भगवान की नहीं है, ब्राह्मणों की गारंटी है। तो ब्राह्मण बन के रहो तो कोई कमी नहीं होगी, ना शक्तियों की, ना इस शरीर के लिए जो आवश्यक है उसकी भगवान अवश्य देगा। ठीक है, समय हो गया है। तो विशेष अगर आप इस रूप में ले आओ अपने को कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, तो यह स्मृति आपको दुनिया से न्यारी बना देगी। और जब दुनिया से न्यारे बन गए, फिर इस शरीर से न्यारे बनना सहज लगेगा। इस देह भान से न्यारे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि दुनिया से न्यारे नहीं। आपको अनुभव होगा, जैसे योग में बैठते हो क्या याद आता है? दुनिया की बातें याद आती है ना, कुछ ना कुछ याद आता है ना। अगर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं तो हमारा सारा संसार ही बाप दादा है, मात पिता है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। बुद्धि कहीं जाएगी ही नहीं, क्योंकि संसारी बाबा है, न्यारे हो जाएंगे। और जब यह हो गए, फिर इस शरीर के भान से न्यारा होना सहज हो जाएगा। और जैसे आत्मा इस शरीर के भान से न्यारे हुई, इसी को तो जीते जी मरना कहा जाता है। और न्यारी हुई, प्रभु की प्यारी बनी, सर्व प्राप्तियां करने के कारण सदा मन ही मन आत्मा मुस्कुराती रहेगी और आपका ये चेहरा खिला रहेगा। जो बाबा चाहता है सो हम बच्चे प्रैक्टिकल में करके दिखा देंगे। अच्छा, ओम शांति।